मुरली की मस्तानी, आदरणीय राजयोगिनी गोपी दीदी जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक और अलौकिक जन्म अफ्रीका की धरनी में हुआ, वहीं पले बड़े हुए और अधिक पलना बढ़ना लंदन की धरनी पर हुआ। पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और 30 से भी अधिक वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं अर्थ जीवन समर्पित किया हुआ है और 25 से भी अधिक वर्षों से आप ऐसे लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो इनर प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप के प्रोजेक्ट लेते हैं और युवा नेताओं के बीच में, महिला नेताओं के बीच में, सामाजिक नेताओं के बीच में, वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में जाकर ऐसे प्रोजेक्ट्स और इनर प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप को बढ़ावा देने की चर्चा करते हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में आप भ्रमण करते हैं इस बात पर जोर डालने के लिए कि जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की कितनी जरूरत है। इसके लिए आप सरकारी प्लेटफॉर्मों पर, मंत्रालयों में, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों में जाकर अपने लेक्चर्स देते हैं और अनेकानेक लोगों को जीवन की एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो आज हमारे बीच में है, मधुबन में भी सेवाओं का आपका गुप्त योगदान रहता है और इसीलिए बीच बीच में मधुबन में आप आते रहते हैं, तो उसी का लाभ भट्टी वालों को भी मिल जाता है। आज हमारे बीच में एक बहुत सुंदर विषय के साथ, मनसा सकाश देने की विधि, तो सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा ने बहुत बारी बताया है, कर्मणा सेवा के साथ, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, तब जाकर के हरेक सिचुएशन में, सेवा में फुल सक्सेस मिलती है। हम जितना कोशिश करते हैं वाचा सेवा से किसी को समझाने के लिए, एक हद होती है, शब्दों की हद होती है, उनकी समझ की हद होती है, लेकिन जब भी हमारी मनोवृत्ति शुद्ध होती है, एक सेकंड में वाइब्रेशन कैच कर लेता है, एक सेकंड में भाव समझ लेता है, तो फिर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो मैं बार बार बोलती हूं, अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है। अभिमान विस्तार में लेके जाएगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलो, अच्छे अच्छे बोलो, लेकिन इसमें सार क्या है वो किसी के मन दिल में नहीं रहा है। अच्छा लगा लेकिन सार नहीं रहा है, उनकी वृत्ति नहीं बदली है उस समय। तो हमारा धंधा क्या है, लौकिक के हिसाब से भी कहते हैं ना, कम्युनिकेशन में केवल आपके शब्द 40% काम करते हैं, बाकी 60% जो काम करती है प्रभाव डालने वाली, वो है आपकी मनोवृत्ति। तो ज्यादातर के आपके शब्दों से, जहां से आप आ रहे हो अंदर से, कौन सी वृत्ति से आप आ रहे हो, वो ज्यादा उसका आवाज इंप्रेशन पड़ता है। कभी कभी हमारी मनोवृत्ति रिएक्टिव होती है, हमारे शब्द ज्ञान वाले होते हैं, बाजू वाला सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन कुछ और कह रही है और हमारे शब्द कुछ और कह रहा है। हमारे वाइब्रेशन में हद है और हम शब्दों द्वारा किसी को बेहद में लेके जाना चाहते हैं। अभी इस टॉपिक के लिए मुझे आज थोड़ा एक्सपीरियंस से शुरुआत करना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने खास एक मधुबन निवासी को भी बुलाया है जो हमारे साथ 2-3 दिन पहले चर्चा बहुत अच्छी तरह से हुई थी सब्जेक्ट पे, और फिर उसके बाद जो लक्षण चाहिए, क्वालिफिकेशंस टू सर्व थ्रू द माइंड। मनसा सेवा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन आपके मन को पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस लेवल की सेवा करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? कोई चीज बिगड़ी हुई होती है, क्या सेवा लेंगे उससे? कुछ चीज पे जंक लगा हुआ होता है, खाद मिली हुई होती है, इसका इफेक्ट इंपैक्ट कुछ नहीं है। तो अपने मन को कैसे क्वालिफाई किया जाए ताकि, और ऑटोमेटिकली जैसे मन की क्वालिफिकेशन बढ़ती है ऑटोमेटिकली वो सेवा बढ़ती है। तो आज मुझे खास श्याम भाई को बुलाना है। श्याम भाई आइए। श्याम भाई मधुबन में कितने समय से रहे वो आप परिचय देंगे, लेकिन हम तो जानते हैं हमारा आईटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से प्यार से संभालते हैं, एवर रेडी रहते हैं। और 2 दिन पहले हम थोड़ा आपस में थोड़ा करंट पुरुषार्थ का लेन देन कर रहे थे, तो जो श्याम भाई ने साकाश के ऊपर जो अपना प्रयोग बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज उनको निमंत्रण दिया कि प्लीज आप आइए और सभी के सामने शेयर कीजिए।
ओम शांति। सबसे पहले तो गोपी बहन को थैंक यू कि उन्होंने ये चांस दिया अनुभव शेयर करने के लिए। और जैसे बताया गोपी बहन ने, नाम तो सुन ही लिया आपने श्याम भाई, और पिछले 22 सालों से मधुबन में समर्पित हैं, और यहाँ का जो आईटी डिपार्टमेंट है, टेलीफोन और पूरा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे सेवाएं देते हैं अपनी। और अनुभव तो आप सभी के पास बहुत सारे होंगे, क्योंकि जैसे ही हम बाबा के बनते हैं तो बाबा अनुभव कराता ही हमें। लेकिन मेरा एक ये है कि बाबा जैसे कहता है कि योग के प्रयोगी बनो, योग का प्रयोग करो, तो मैं काफ़ी समय से अलग अलग चीज़ों पे योग का प्रयोग करते आया हूँ। और जैसे हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी आत्मा के साथ हिसाब किताब है, कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है तो कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ हिसाब किताब है, बिना हिसाब किताब के कुछ नहीं होता। आप लोग यहाँ भी आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हिसाब किताब है, तभी पांडव भवन में भट्टी करने आए, शांतिवन या ज्ञान सरोवर दूसरी जगह क्यों नहीं गए करके, हिसाब किताब होता है। जिन आत्माओं के साथ अच्छा हिसाब किताब होता है तो आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, भले एक ही बार आए लेकिन बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा हमें लगता है उनके साथ। और जिनके साथ खराब हिसाब किताब होता है तो आत्माएं जैसे ही संपर्क में आती हैं हम सोचते हैं कहाँ से मिले, एक ही बार मिले 2 मिनट के लिए, लेकिन कड़ा हिसाब किताब जिसे हम कह सकते हैं होता है। वैसा ही सब हमारा प्रकृति के साथ में भी हिसाब किताब होता है। तो प्रकृति के लिए भी जब हम सकाश देते हैं जैसे गोपी बहन ने बताया, मुझे ऐसे लगता है या मेरा जो अनुभव है कि अगर किसी को जैसे बहुत खांसी है, कई सालों से बहुत खांसी है, और वो दूसरे को कहे कि आओ मैं आपकी खांसी ठीक कर दूं, आपको दवा दे दूं, तो सामने वाला मानेगा? नहीं मानेगा। तो बाबा जो है इन सारे हिसाब किताब से न्यारा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वो हमको सिखाता है कि हम कैसे हिसाब किताब से मुक्त हो सकते हैं। इसे 6-8 महीने पहले संडे की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम बच्चे हिसाब किताब बनाते हो और बाबा को कहते हो कि हिसाब किताब चुकतू करो, तो बाबा हिसाब किताब चुकतू नहीं करेगा, लेकिन बाबा विधि बताता है, बाबा मदद करेगा हिसाब किताब चुकतू करने में। तो अभी मैं ज्यादा समय न लेकर एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सारे प्रयोग करते रहता हूँ योग के, अलग अलग आत्माओं के साथ ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी। तो मेरे जैसे शरीर में है पहले से बचपन से जब से होश संभाला है या ध्यान आया है कि शरीर में हमेशा दर्द होता था, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, जिसको हम अगर मेडिकल टर्म में कहे तो जिसे वात की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, कभी पैर दुख रहा है कभी कहाँ दुख रहा है, ऐसे होता था। फिर जब मधुबन में आया 2001 में, उसके बाद भी ठीक था और धीरे धीरे बढ़ते गया प्रॉब्लम इस तरह से। तो मैं खुद योगाचार्य हूँ, पतंजलि सर्टिफाइड, और लास्ट 10-11 साल से मैं खुद योगा करता भी हूँ और लोगों को कराता भी हूँ योगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, दवा लेंगे। अभी जैसे शुक्रवार या शनिवार की मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई भी ग्रहचारी होती आदि होती है, बीमारी होती है, दवा लेते जाओ ठीक नहीं होगी, लेकिन वही जब ग्रहचारी उतर जाती है तो मिट्टी चुटकी चपटी से भी ठीक हो जाता है। तो थोड़े दिनों पहले, एक साल पहले ही, ऐसे मैं बाबा से बात कर रहा था, मतलब बात नहीं कर रहा था, इनफैक्ट झगड़ा कर रहा था मैं कि ये इतनी मैं योग करता हूँ, हर चीज में मुझे सक्सेस मिलता है योग में, जब जो भी मैंने किया है आत्माओं के लिए प्रकृति के लिए, तो ये मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है, जो पेन की बीमारी है मुझे शरीर में। तो बाबा ने जैसे मुझे कहा कि बच्चे मैं दुख हरता सुख करता हूँ, मैं दुख नहीं देता, ये दुख जो है तुम्हें अपने लौकिक पिता की तरफ से मिला हुआ है। तो हमारे घर में एक्चुअली ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिसको वात की प्रॉब्लम कहते हैं, मेरे पापा को भी था प्रॉब्लम ये, और मेरे जो भाई है जिनकी, जैसे कहते हैं ना, बॉडी जो है मम्मी के ऊपर जाती है पापा के ऊपर जाती है, तो जिनकी पापा के ऊपर गई है उनको भी ये प्रॉब्लम थी, है भाइयों को, लेकिन उनको कम है। मैं कहूंगा कि शायद मैं बीके हूं इसलिए मुझे ज्यादा बीमारी हो रही है, जो भी हिसाब किताब जिसे हम कहेंगे। तो उस दिन से मैंने अपने लौकिक पापा के लिए योग करना शुरू किया, वो तो नहीं है, काफी साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जैसे मैं करता हूं किसी भी आत्माओं के लिए योग, तो उनको सूक्ष्म अवतरण में बाबा के सामने इमर्ज करता हूं, और उनसे मैंने ये कहना शुरू किया कि हो सकता है, हो सकता नहीं, फैक्ट है कि किसी जन्म में मैंने ये बीमारी आपको वर्षे में दी होगी, और इस जन्म में ये बीमारी आपके द्वारा मुझे वर्षे में मिली है। जैसे लौकिक माता पिता से बच्चों को वर्षा मिलता है ना, प्रॉपर्टी का पैसे जायदाद, तो ये मुझे जायदाद मिला है प्रॉपर्टी आपकी तरफ से। तो मैं बाबा को साक्षी रख के आपसे माफी मांगता हूं कि आप प्लीज मुझे माफ कर दो, और 3 बार मैं उन्हें कहता था कि आप मुझे माफ कर दो, और मैंने भी आपको माफ कर दिया है, और मेरी आपके प्रति शुभ भावना है कि आप जहां पर भी हो आप हमेशा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो जो भी है। और धीरे धीरे करके 10-15 दिन में इफेक्ट मालूम पड़ना शुरू हुआ, और लगभग 2 से 3 महीने के बाद मैं आज मैं ये कहूंगा कि मेरी 90% ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। वो कहने का भाव ये है कि जब हम सकाश देते हैं या मनसा सेवा करते हैं तो हमारी खुद की स्टेज पहले उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अपने आप ही हमारे से वो वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। और दूसरी बात, बाकी तो आप गोपी बहन से सुनेंगे इसके विधि और सारी बातें, लेकिन ये कि हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें कंटिन्यूशन होना चाहिए। कि कोई भी चीज हम करते हैं तो मैं मानता हूं कि उसमें अगर हमको सक्सेस चाहिए, जैसे बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें 3 चीजें होती है, LCD, L फॉर लॉन्ग टाइम, C फॉर कंटिन्यूशन एंड D फॉर डेडिकेशन। जितना हम उस चीज को समझ के, जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में, सच्चे दिल पे साहेब राजी, तो अगर हम सच्चे दिल से बाबा से बात करेंगे तो बाबा उसका जवाब देता है। और हमें भी ये पता होना चाहिए कि ये हिसाब किताब है, चाहे आत्माओं के साथ हो चाहे शरीर के साथ हो, तो बाबा हमको मदद करता है, और फिर हमारा हिसाब किताब सचमुच हम दिल से जब चाहते हैं कि हमको ये चुकतू करना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो ज्ञान है हमको कि 84 जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, आत्माएं आएंगी हमारे सामने। तो रोज केवल हम, मैं 2 मिनट ही करता था, ऐसा नहीं कि कोई आधा घंटा कर रहा हूं 1 घंटा कर रहा हूं, नहीं, केवल 2 मिनट रोज करता था, 15-20 दिन में ही इफेक्ट मालूम पड़ना शुरू हो गया। तो मैंने ये इसलिए बताया कि जैसे डॉक्टर ने हमको दवा खाए, कोई गोली दी है खाने के लिए कि आपको ये गोली दिन में 1 बार खानी है, तो कभी हम सवेरे खा रहे हैं, कभी शाम को खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। जितना हम कंटिन्यू करते जाएंगे प्रकाश देने की सेवा, मनसा सेवा, जो भी जिस चीज के लिए भी, तो इसका इफेक्ट 100% पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इफेक्ट ना पड़े उसका। तो ये तो छोटा सा अनुभव था, गोपी बहन ने बुलाया इसलिए मैंने आके शेयर किया।
दिल से मनसा सेवा करना, ये विधि से आपको सिद्धि मिली ना, तो मनसा सेवा दिमाग से करना और दिल से करना बहुत फर्क है। तो आपका एक्सपीरियंस दिल से मनसा सेवा करना, दिल से कैसे वो निकली?
दिल से जैसे बाबा हमको कहता है कि आप सब पूर्वज हो, एक्चुअली बाबा कहता है मनसा सेवा करो, हम सकाश देते हैं दुनिया, अभी थोड़ा और इसमें डिटेल जाऊंगा, शायद टाइम ज्यादा हो जाएगा। हमको मनसा सेवा क्यों करनी है, सकाश क्यों देना है लोगों को, क्यों देना है? हाँ जी, और दुनिया में आत्माएं पुकार रही है, तड़फ रही है, चिल्ला रही है, उनको प्रॉब्लम है, इसलिए हमको देना है सकाश। ठीक है, जितना हम देंगे हमको उतनी दुआएं मिलेगी, रिटर्न मिलेगा, जो भी है। ठीक है, मैं ये मानता हूं जो बाबा के पास से क्लियर हुआ कि हम अभी थोड़ा और उसको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज की डेट में दुनिया की पॉपुलेशन कितनी, 800 करोड़ है, हम 700 करोड़ मान लेते हैं एक बार, वो टोटल देवी देवताएं कितने हैं, 33 करोड़। तो 700 करोड़ को अगर हम 33 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो हर एक के खाते में 21 आत्माएं आती हैं, जो लास्ट की 33वें करोड़ नंबर की आत्मा है, जिसके लिए बाबा कहता है कि वो आज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत ऊंची है, एकदम लास्ट की 33वीं करोड़। अब हम यहां बैठे हैं, हम 15 साल 20 साल 40 साल से ज्ञान में है, मैं मधुबन निवासी हूं, मैं थोड़ी कहूंगा कि मैं 33वें करोड़ में जाऊंगा, नहीं, मैं तो 9 लाख में आऊंगा, सत्युग की आदि प्रजा समझिए। तो ये 9,700 करोड़ को अगर 9 लाख से डिवाइड करते हैं तो हर एक के खाते में 7,777 आत्माएं आती है,
जिसके लिए आप पूर्वज हो।
हाँ, तो हम संगम पर जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा करते हैं वो इन आत्माओं में जाता है, और हम सारे कल्प में जो भी करते हैं, सत्युग त्रेता में कोई हिसाब किताब नहीं होता है, लेकिन द्वापर कलयुग में हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो इन आत्माओं को जाता है, और बाद में रिटर्न इनसे ही हमको मिलता है, क्योंकि हम पूर्वज हैं। मतलब घर में जैसे माँ बाप है, बच्चे हैं, माँ बाप अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने आसपास के मोहल्लों के बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको खिला पिला रहे, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे खुश होंगे माँ बाप से? नहीं होंगे। जब माँ बाप सोने जाएंगे, आराम करने जाएंगे, शांति से बैठेंगे, तो बच्चे सोने देंगे उनका, शांति से बैठने देंगे? नहीं देंगे। तो हम जब योग में जाते हैं तो हमारे जो ये बच्चे हैं, इतने सारे कितने होंगे पता नहीं, वो सब हमको डिस्टर्ब करते हैं, और हमको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे शारीरिक या मानसिक, वो इन आत्माओं की तरफ से आती है, क्योंकि हमको उनको देना है और हम दे नहीं रहे। तो देने की दो ही विधि है, एक तो है अपने संपूर्ण अवस्था में टिक जाना, जैसे बाबा है हमेशा संपूर्ण स्वरूप में, बाबा बिंदी मैं बिंदी, कोई संकल्प नहीं, शिव बाबा ऊपर से बैठ के संकल्प नहीं करता, इसको ये चाहिए वो दो, उसको वो चाहिए नहीं दो, वो अपने संपूर्ण अवस्था में आत्माओं को अपने आप मिलता है। और दूसरा जो है कि हम खुद से उनको देवे, जैसे हमने किसी से हिसाब किताब है, किसी से कर्जा लिया है हमने, वो बार बार हमारे पास आ रहा है मांगने के लिए, लेकिन हम उसको दे नहीं रहे, तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, तकलीफ देगा। तो कोई आत्मा अगर हमारे संपर्क में आ रही है, कुछ अनबन हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, या प्रकृति के साथ में भी है, तो हमको समझना चाहिए कि वो आत्मा हिसाब किताब चुप तो करने के लिए आ रही है। जब ये डीप ज्ञान हमको होगा, डीप, क्योंकि बाबा जितना सूक्ष्म है बिंदी, बाबा का ज्ञान उससे ज्यादा सूक्ष्म है, जब हम इस चीज को समझेंगे तो फिर हमको दिल से लगेगा कि नहीं हमको देना है। जैसे गोपी बहन ने पूछा, दिमाग नहीं यूज करना उस समय, आ रहे भाई ठीक है जाने दो जो भी चले, नहीं, हमको सचमुच अंदर से लगना चाहिए कि आत्मा के साथ मेरा कुछ हिसाब किताब है, यह आत्मा लेने आ रही है, और मैं जब तक दूंगी नहीं यह आत्मा जाएगी नहीं, या तो प्यार से दो या तो मार से दो, देना तो पड़ेगा, हिसाब किताब चुप तो करना पड़ेगा, इसलिए प्यार से, दिल से। और मैंने जैसे कहा कि सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बाबा को विटनेस रख के कि बाबा मुझे ये हिसाब किताब इस आत्मा के साथ सचमुच चुकतू करना है, और फिर उस आत्मा को सकाश दो, क्योंकि वो आत्मा नहीं, वो अनजान है, उसको नहीं पता कि हिसाब किताब है या जो भी, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, लेकिन हम जब बाबा को साक्षी रख के दिल से करते हैं तो उसके लिए जिम्मेवारी फिर बाबा की हो जाती, फिर बाबा उस हिसाब किताब को चुकतू करेगा फिर।
ग्रेट, थैंक यू, अच्छा लगा। देखो, थैंक यू श्याम भाई,
थैंक यू टू यू,
नहीं नहीं
एवरीवन,
इतने वंडरफुल, थैंक यू, इतने वंडरफुल गुप्त पुरुषार्थी बैठे हैं। देखो अभी हम यहाँ ही समाप्त कर लेते हैं क्लास को, कभी ऐसे, देखो हम तो ज्ञान देने में होशियार है, अपनी संपूर्ण अवस्था में बैठो, लेकिन कोई अपना अनुभव सुनाता है वेरी ऑनेस्टली, और प्रयोग भी किया है उसका, और रिजल्ट भी निकला है, तो कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने इनको खास बुलाया था, और मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो अंदर से मुझे एक शब्द मन में आया, वह है रहम। जब तक रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक हमारा सकाश कहां तक पहुंचेगा। समझ में आई बात? और लास्ट में जो इन्होंने बताया राइट बात थी, जो पहली विधि जो बताई थी कि अपनी संपूर्ण अवस्था में बाबा के सामने रहो और आपे ही जो आप और बाप के बीच में जो संपूर्ण फीलिंग्स होते वो आपे ही उस आत्मा को पहुंचेगा। ये बात राइट है, लेकिन मुझे अपने आप को बाबा के सामने रखना, एक सेकंड के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए, जैसे मैं चिपक करके बाबा के साथ बैठूं, उसके लिए मेरे अंदर से रहम बहुत चाहिए। अदरवाइज मैं उस रहम, क्योंकि बाबा तो रहम का सागर है, आप कैसे उसके साथ ठहरेंगे? आपका दिल छोटा हो जाएगा कई बातों से। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी रहम को खत्म कर लेती है, पता है आपको? कौन सी बात है जो आपकी रहम को खत्म कर लेती है? क्या है? देहभान तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ईर्ष्या और तेरे मेरे की भावना और स्वभाव संस्कार, बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सी बातें हैं स्वभाव संस्कार में पूरे? मैंपन का क्या, पोस्ट पोजिशन, आलस्य और घृणा, आवेश, द्वेष, हाँ। और दूसरा एक बहुत बात है कि हमारे संबंध में एक दोनों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस शुड बी लाइक दिस, दिस शुडंट बी लाइक दिस, वो तो टोटल नतीजा हार्मनी है ही नहीं। जब रहम खत्म होता है तो हार्मनी होंगी ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में मेरी माइंड सेट कौन सी है जो मेरी दिल को बंद रखी हुई है अभी तक? लेकिन ये सेल्फिशनेस कई विचार संकल्प से उत्पन्न होते हैं ना। दिल का दरवाजा बंद होता है क्योंकि हम एक माइंड सेट को राइट समझते हैं, और हमारे एक तो हमारे संपर्क में, संबंध में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे सूक्ष्म जजमेंट चलता रहता है, ओपिनियन करते रहते हैं। एक बारी दादी जानकी ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया कि सकाश लेना है और देना है तो उसके लिए क्या किया जाए, कि बिल्कुल मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं, कोई भी थोड़ा सा भी फीलिंग बीच में नहीं होना चाहिए। अभी मेरा को छोड़ने के लिए ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि मेरा बहुत सूक्ष्म में आता है, मेरा विचार, मेरी आइडिया, मेरी दृष्टिकोण, मैं क्या देख रही हूं, ये सारी बातें जो हम सूक्ष्म में पकड़ के बैठे हैं और हम संबंध में आते हैं, वही ब्लॉकेज बनती है गुड विशेष का लेन देन में, सूक्ष्म ब्लॉकेज है। तो फिर हम एक दोनों पे इंप्रेस करते हैं, चलो मैं मेरा ज्ञान है, पीछे आप और करेंगे, मैं कर, इसमें क्या रूहानियत है, इसमें क्या शुभ भावना की एक्सचेंज हुई? फर्स्ट रिक्वायरमेंट, डीपली सरेंडर्ड बुद्धि चाहिए, बिल्कुल हद का मेरापन, ओम शांति, फुल स्टॉप, हद का मेरापन, डीप सरेंडर्ड बुद्धि चाहिए, तब जाकर के मैं और मेरा बाबा। और उस संबंध से जैसे क्या कहेंगे, कल्याण की भावना, रहम की भावना, बस इनका कल्याण हो, इनका भला हो, यही चाहते, बस जैसा भी हो वैसा भी हो, नो प्रॉब्लम, इनका कल्याण हो, वो फीलिंग अंदर से निकलेंगी। आप हद में नहीं फटे फंस जाएंगे। हद में फंसना माना किसी का स्वभाव संस्कार नोट करके फिर उस अनुसार चलना। अभी हम सारे अपने ये आदतों में फंसे हुए हैं, ये आदतों की रियलाइजेशन नहीं है, फिर हम मनसा सेवा की बात कर रहे हैं। इसीलिए पहले तो अंदर से बहुत गहरा रियलाइजेशन चाहिए इन बातों का, ये बात राइट है कि जिसके लिए हम पूर्वज हैं, जो बाबा ने टाइटल दिया है ब्राह्मण आत्माओं के लिए, पूर्वज आत्माएं हैं, आपके पीछे बहुत सारी आत्माएं हैं और आपकी ऊंचाई नीचाई में उनको दुख पहुंच रहा है। आपको कभी यह महसूस हुआ है? और आप जितना ऊंचाई नीचाई करेंगे ना, उतना उसको दुख पहुंचेगा और उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा, तो आप वहीं वहीं रह जाएंगे। इतने सालों से ज्ञान में है, परिवर्तन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि डेप्थ में रियलाइज नहीं किया है, मैं पूर्वज आत्मा हूं। इन्होंने तो स्टैटिस्टिक से बताया आपको, आप 33 करोड़ को 9 लाख में डिवाइड करो, कितने हैं? 7777। अभी ये तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप देखा जाए, लॉजिकली भी आप पूर्वज आत्मा हो, तो बाबा क्या झूठ बोल रहा है? पूर्वज के डेप्थ में जाओ। समझ आई बात? अभी तो हम बस अपनी ही दुनिया में फिर रहे हैं, बस मैं ये हूं, मेरे कपड़े हैं, मेरा जॉब है, मेरा टाइटल है, बस ये, और चक्र का तो कोई भान ही नहीं है। लेकिन मैं पूर्वज आत्मा हूं, यहां से शुरू करो। जब आप यहां से शुरू करेंगे ना, तो हर बात में, संकल्प में, वचन में, कर्म में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कल्याण लाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं आपकी, नई दुनिया रचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। आपको कोई ने, किसी ने आपको जिम्मेवारी दी नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है आपके स्वमान के टाइटल के अनुसार। अभी आपने, आप अपने दिल को पूछो, सच में कहां तक मैंने अपने आप को पूर्वज समझा है? कहां तक मैंने अपने आप को पूर्वज समझा है? तो सारा दिन कौन से बांध में फिर रहे, घूमरे फिर रहे? मैं टूरिस्ट हूं, मैं किसी की बीवी हूं, किसी की फलानी हूं, किसी की फ्रेंड हूं, किसी स्टूडेंट हूं, कोई टीचर हूं, और हमारा बेहद का स्वमान। हम जब तक बेहद में नहीं रहेंगे तो इन लोगों की मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कब होंगी? तो इसीलिए ये जो पूर्वज का जो स्वमान है, खास करके हर एक स्वमान दूसरे स्वमान से लिंक है। आपने अपने आप को पूर्वज नहीं समझा तो मास्टर सर सर्वशक्तिवान कैसे समझेंगे? नॉट पॉसिबल। तो बहुत डेप्थ में जाकर के एक एक टाइटल का रियलिटी देखना है कि हाँ ये रियल है, ये मैं हूं। अभी मुझे अपने आप को कैसे चलाना है? ये दादियां दादियां क्यों बनी है? ऐसे नहीं कि दादियां में कमजोरी नहीं थी, दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बीइंग्स, पुरुषार्थ ही है वो। लेकिन एक बड़ा अंतर है दादी और हमारे के बीच में, और वो है कि दादियों ने जो बाबा ने फरमान दिया था, जो बाबा ने इनको जो बोला था, उन्होंने पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये है, हम थे कल्प वाली पहली आत्माएं, हम वापस आए, अभी हमको सारे विश्व का कल्याण करना है। कभी उन्होंने इस बात को छोड़ करके अपनी बुद्धि को गृहस्थ में नहीं बिठाई, गृहस्थी नहीं बनाई है। सेंटर खोलते हैं, गृहस्थी बन जाती है, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी सेवा, हमारी दादी, मैं बार बार ये बताती हूँ, जून 74 में जब लंदन आए थे, तब उम्र थी करीबन 61 की उम्र थी। भारत में तो सेवाओं की वृद्धि हो रही थी, 300 का क्लास होता था हर रोज उस समय, विदेश में आकर के मस्त मस्त 4-5 लोग, वो भी वीकेंड में, हर रोज वाले आने वाले नहीं। फिर भी देखो दादी की मानसिक अवस्था, कभी ऐसे नहीं सोचा रे मैं कहां आई हूं, ये सारा छोड़ करके मैं मुझे अकेली भेजा है यहां पे, कोई हैंड्स नहीं है, कुछ नहीं। हद के संकल्प में नहीं गई है, हद के फीलिंग्स में नहीं गई है दादी। और ही साइलेंस की शक्ति को यूज करके आत्माओं का पुकार सुन रही थी। कभी कभी जयंती बहन बताती थी, दादी को पूछते थे, दादी कैसे होंगे ऐसे भाई, दादी कहते मेरे सामने तो हजारे आत्माएं मैं देख रही हूं। तो कहां होना चाहिए आपकी स्मृति ताकि आपको वो आवाज सुनाई देवे। इतनी साइलेंस की शक्ति में जाना है, माना सब हद के संकल्प को समाप्त। हद के संकल्प जो रिएक्टिव वाले संकल्प, जो परिस्थिति को देख करके संकल्प चलाते हैं, फालतू संकल्प, जो हो रहा है नेचुरल है, एक्यूरेट है, आपका क्या जाता है इसमें। हमको तो कुछ बनना है ना। लास्ट में जब आप बाबा के सामने आएंगे और आप बाबा को बोलेंगे, बाबा आपको पूछेंगे, अरे बच्ची तुम संपूर्ण संपन्न अवस्था तक क्यों नहीं पहुंची, तुम ऐसी थी, अरे बाबा क्या करे, ऐसा था ना, ऐसा ऐसी सिचुएशन आई ना मेरे सामने। अच्छा, वो सिचुएशन आपके सामान से बड़ी है क्या? क्या एक्सक्यूज देंगे? तो अभी सब बातें छोड़ो जो आपकी मानसिक अवस्था को हद की फीलिंग में लेके आती है। इसने ये किया, वो किया, ये नहीं होना चाहिए, ये सब इसका लिस्ट बना करके इस किचड़े को यहां छोड़ो। दिल से छोड़ना है, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं। और ये जरूर कि हमारी चढ़ती कला से सर्व का भला, कुछ भी सहन करना पड़े, हमारी चढ़ती कला से सर्व का भला। सहन तो करना पड़ेगा, 63 जन्मों के लिए यू हैव नॉट बीन ऑन वेरी बेस्ट बिहेवियर, तो अभी क्यों क्या प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जो कुछ आ रहा है चुकतू होने के लिए आ रहा है, यू कैन नॉट आस्क व्हाई, क्यों मेरे साथ हो रहा है ये, आज भी स्पष्ट बाबा ने बताया। कोई पति अपने पत्नी को मारता है, हिसाब किताब, कुछ पूर्व जन्म में उसने भी उसको मारा होगा, समझ में आई बात। तो मैं अपना दिल छोटा कर दूं, अपने आप को एक विक्टिम समझूं, अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे बहन जी मेरे साथ ऐसे क्यों बोलती है, ऐसे, क्योंकि मैंने कई जन्म में ऐसा ही व्यवहार किया होगा, शायद उस व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि वो एक जन्म में कर्म का हिसाब किताब संस्कार के साथ होता है, रूट है संस्कार। ब्राह्मण आत्माएं निमित्त बनती है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, ट्रिगर बनते हैं, ऐसे नहीं कि इसके साथ हिसाब है, लेकिन जिस संस्कार को यूटिलाइज किया है उस कारण से हिसाब खुला ना। तो मेरे में इतनी नम्रता है कि जो भी मेरे सामने व्यवहार हो रहा है, उल्टा सुल्टा व्यवहार हो रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं और मैं ये रियलाइज करूं कि मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है, इसीलिए ये मुझे रिटर्न में मिल रहा है। है इतनी रियलाइजेशन पावर, यह है रिस्पॉन्सिबल आत्मा बनना, यह है स्वदर्शन चक्र को घुमाना और वापस खुद के पास लेके आना कि एट द एंड ऑफ द डे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इसमें ब्राह्मण कैन नॉट बी विक्टिम, समझ में आई। और जब आप अपने आप को ऐसे समय दिल शिकस्त हो जाते हैं, अरे मेरे साथ हो रहा है, क्या करे, खलास गए काम के। आप हो कौन, आपका बैकबोन कौन है? तो अंदर से ये जो क्या कहेंगे, गुलामी, मैं कहूंगी ये गुलामी है। और आप कोई ना कोई आपका सूक्ष्म स्वभाव या पुराने संस्कार के गुलाम हो अभी भी, इसीलिए अंदर से थोड़ी मजबूरी आती है कभी कभी। और वो जो मजबूरी की फीलिंग है ना, वो कभी आपका मन को खुला नहीं रखने देंगी। अभी माइंड ओपन नहीं है, दिल ओपन नहीं है, तो मन सजेवा कैसे होंगे? तो पीछे का जो प्रेपरेशन है, मन को खुला रखना, दिल को साफ रखना, माना मुझे अपनाना पड़ेगा फुल्ली कि जो बाबा मेरे लिए बोल रहा है वो एब्सोल्यूट राइट है, सच है, मुझे वहां से शुरू करना है मेरी थिंकिंग। कोई भी सिचुएशन में आपके सामने कोई भी उल्टा सुल्टा बिहेवियर करे, गाली देवे, मैं कौन हूं? मैं पूर्वज हूं। तो मैं पूर्वज हूं तो उस समय मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरे व्यवहार अनुसार वो हिसाब किताब चुक तो बंद होगा ना। मैं अपने आप को पूर्वज मानूंगी तो दिल का रहम निकलेगा, दुआएं निकलेंगी, क्षमा भाव निकलेगा, आप पे ही वो रियलाइज करेगा। जब तक आपके दिल से रहम भाव, क्षमा भाव, दुआ भाव फुल नहीं निकली है सभी के प्रति, तभी आप लायक नहीं हो मनसा सेवा के लिए। मैं सीधा शब्दों में बोल देती हूं, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अंदर की बहुत गहरी क्लिनलीनेस की बात है। तो मुझे अपने आप को छुड़ाना है अभी, हद हद की वृत्ति से, हद की दृष्टि से। और खास करके हमको जो टेस्ट पेपर आते हैं ना संबंध में, ये भी बात राइट थी कि कभी कभी हमारा मूड बदलता है, कभी कभी कुछ अंदर से खींचातान लगता है, क्योंकि जिसके लिए हम निमित है उनको दुख पहुंच रहा है तो उसका तो असर हमको थोड़ा भोगना पड़ेगा ना। इसलिए मन सा साकाश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि साकाश लाइट माइट देते हैं तब जाकर के उनको राहत मिलती है, रिलीफ मिलती है। उनको रिलीफ मिलती है, संतुष्ट होते हैं तो हम आजाद बन जाते हैं। साकार बाबा, दादी बहुत कहती थी, जब दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था, दादी का लंग्स का बहुत प्रॉब्लम था बचपन से, तो साकार बाबा रातों रात बैठ करके साकार, इसके लिए रियली टाइम चाहिए। दादी हमको कहती थी, अमृत वेले के बाद थोड़ा टाइम निकालो, जिसके लिए आप निमित्त हो साकार दो, अपने शरीर को साकाश दो, इसको एक हैबिट बनाओ, ताकि वो जो आप बाबा के साथ बैठे हो, वो जो लाइट माइट का आपको अनुभव हो रहा है, वो उन आत्माओं तक पहुंचे। क्योंकि हमको एक स्पिरिचुअल वायरलेस सेट बनना है, समझ में आई बात? स्पिरिचुअल वायरलेस सेट क्या करता है? वाइब्रेशन देता रहता है। हमको ऐसे बनना है, तो इसके लिए बहुत ध्यान चाहिए। तो हम अपने आप का ट्यूनिंग रखें ताकि बाबा हमारे से दूर ना रहे। थोड़ा सा भी हद आ गया बीच में, दूरीपन हो गई। थोड़ा सा आपने अपनी कमी कमजोरी में इंडल्ज किया, मैं ऐसी हूं वैसी हूं, क्या करे कैसे कर गए, बाबा भी साक्षी हो जाता है। हिम्मत की डेफिनेशन बहुत डीप है। मन में जो तूफान आते हैं, स्थूल में तूफान आते हैं, सारे कर्म बंधन चुक तो हो रहे हैं। थैंक्स थैंक्स तो, लेकिन अपना जो काम है स्पिरिचुअल वायरलेस सेट बनना है मुझे, वो नहीं छोड़ना है। तो सदा ऐसा रहूं, ऐसे मेरी मानसिक अवस्था रहे जो बाबा मेरे आंखों में घूमता रहे, बाबा मेरे नजरों में घूमता रहे। और ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं बाबा से दूर हूं, क्योंकि कुछ कारण है आपके स्वभाव संस्कार में जो आपको बाप से दूरी महसूस कराती है। अनादि संबंध है, इसमें दूरीपन क्यों महसूस हो? कुछ माइंड सेट में अपना पुराना स्वभाव चल रहा है, यहां एंगेज है कुछ। तो सकाश देना है, पहले खुद को समझना है कहां से सिग्नल्स आ रहे हैं, मेरी अपनी अवस्था में हलचल क्यों हो रही है, चाहे शरीर को सकाश देना है, चाहे प्रकृति को। तो जितना हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे ना, कि जितना मैं बाबा के साथ बैठूं, लाइट माइट का अनुभव करूं, उतना तक मैं स्पिरिचुअल वायरलेस सेट बनूंगी। और फिर चलते फिरते वो वाइब्रेशंस जिसके साथ मैं सामने आऊंगी उसको मिल जाएगा। फिर संबंध में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना बोलते हैं, किसी को मनाते हैं, किसी को समझाते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। आप पे ही उसको वो जैसे लाइट माइट की छत्र छाया महसूस होंगी। समझ में आई बात? उसके लिए ये ध्यान जरूर रखना है मन में कि मन की अवस्था, खास करके संकल्प की क्वालिटी श्रेष्ठ और अव्यभिचारी, अनअडल्टरेटेड और एल्ट्रुइस्टिक, कि मेरे संकल्प में कुछ स्वार्थ नहीं है। आप अपनी विचारधारा को देखो, आप शॉक हो जाएंगे कितनी स्वार्थ सेल्फिशनेस है उसमें। कुछ काम करेंगे दिखावा के लिए ताकि कोई देखे और आपको अप्रिशिएट करे, स्वार्थ। करेक्ट? लोक लाज के बंधन में अभी फंसे हुए हो। मैंने दादी को एक बारी पूछा था कि दादी आप लोगों के पास शक्ति इतनी कैसी आई? कहती हमने लोक लाज को तोड़ा है। अभी भी 90% ब्राह्मण लाइफ में लोक लाज में फंसे हुए हैं। बहन जी को दिखावे के लिए, बड़ों को दिखावे के लिए, लेकिन अंदर कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं। कहां तक? और ये जो आप कर्म कर रहे हो दिखावे के लिए, काम चलाओ के लिए, वो आपका हिसाब बन रहा है सारे कल्प के लिए। आपके साथ ऐसे ही व्यवहार होगा सारे कल्प के लिए। और जो चीज आप दिल से करेंगे, वफादारी से करेंगे, इंटेग्रिटी से करेंगे, तो आपके सारे साइकिल में, सभी जन्मों में आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा रिटर्न में। तो इसलिए अपने आपको हल्का नहीं छोड़ो। ऐसे नहीं समझो कि कोई देखता नहीं है, चलो छोड़ दो ना। क्योंकि ये सब बातें आपको आगे वाले जन्मों में भी पता चलेगा। तो अभी दिल से, हमारी दादी ऐसी थी, कुछ काम चलाओ नहीं चाहती थी, कुछ भी नहीं काम चलाओ। और दादी ने अपनी अवस्था को ऐसे सेट किया था, दादी की बुद्धि बहुत सरेंडर्ड थी, बाप के फरमान के ऊपर और ड्रामा के सिग्नल्स, और बीच में दादी थी। अभी परसेंटेज वाइज देखा जाए ब्राह्मण परिवार में, तो हम कहेंगे चलो कितने परसेंटेज बाबा के फरमान फॉलो करते होंगे। आप अपने ही लाइफ में चेक करो कितना परसेंटेज आप बाबा के फरमान फॉलो करते हैं। 5%, 10%, 20%, ठीक है। और फिर ड्रामा 2%, 3%। इसलिए गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, बीच वाली गाड़ी। तो ये दोनों हमको कंपेनियंस मिले हैं, एक मां एक बाप मिला है, दोनों कल्याणकारी है। बाप विश्व कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और हमें दोनों के बीच में है। तो समर्पण बुद्धि माना, बाबा की बात को नहीं टालनी है, ड्रामा की बात को टालनी नहीं है, नो क्वेश्चन। इसमें भला है, जो है जैसा इसमें भला है। कभी कभी क्या होता है, हर एक का सॉफ्टवेयर अलग होता है यहां पे। ब्रेन का सॉफ्टवेयर अलग होता है, अपने कर्म के हिसाब किताब चुकत। चलो हमारा सॉफ्टवेयर में हम कहते हैं हमारा स्पेशल अवेयरनेस बहुत बड़ा है, मुझे एक सेकंड में कमरे में आती तो मुझे तुरंत सब चीजों का पता चलता है। सो ये कहते हैं स्पेशल अवेयरनेस। कई लोग आते हैं उनको पता भी नहीं है गुरु में क्या है। बस सीधा कहां जाए, बस नजीक है बैठ जाओ, बाकी अवेयरनेस ही नहीं रहता है मैं कहां बैठी हूं, किसके साथ बैठी हूं। स्पेशल अवेयरनेस थोड़ी कम है। अभी दोनों साथ में काम करें तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एक कहेंगे तुम देखती नहीं हो कहां जा रही हो, बार बार पूछेंगे कैसे जाना है क्या करना है, और अरे देखती नहीं हो तेरे सामने ही खड़े हैं, देखो ना रूम में बैठे, पूछो ना जा करके, समझ में आएगा। तो हमको अपने सॉफ्टवेयर अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है ही। आपका सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग बिल्कुल अलग है, तो आप अपने सॉफ्टवेयर अनुसार चलेंगे तो आपको डेफिनेटली दूसरे के सॉफ्टवेयर पर चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि आपके जैसे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है और नहीं भी होगा। ये जो सॉफ्टवेयर की बात की स्वभाव है, ये पूरा सॉफ्टवेयर को भी त्याग करना है, समर्पण बुद्धि माना बाबा का डायरेक्शन जो ड्रामा मेरे सामने लेके आए, इसमें भला है। माना अपनी बुद्धि पहले नहीं चलनी चाहिए। देखो कई ऐसे सिचुएशंस आए हैं दादिया के सामने। मैं पता नहीं कहां थी, कोई लास्ट वीक शायद टीचर्स की भट्टी में थी, तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था। इस संबंध की बात है, ठीक है। दादी के सामने एक बार क्या वो ऑक्सफोर्ड में था, तो उसमें हमारा एक पब्लिक प्रोग्राम था जिसमें बहुत अच्छा हॉल था, एक यूनिवर्सिटी का हॉल था, और एक बीके भाई जो एक मशहूर जर्नलिस्ट है वो पैनल इंटरव्यू कर रहा था दादी और एक वीआईपी के साथ, ठीक है। तो प्रोग्राम से पहले उसने दादी के सामने तैयारी, दादी को प्रिपेयर करने के लिए आया था, तो दादी को बोला दादी अभी ये ऑक्सफोर्ड है, ये ऐसा ऐसा क्राउड है, आप बहुत ज्यादा भगवान की बातें नहीं करना। अभी आप दादी को ये बोल रहे जिसके रग रग में बाबा बैठा हुआ है, ठीक है। दादी चुप हो गए, दादी ने कुछ बोला नहीं है, सब बातें सुनी, लेकिन वो अपना आप बोलेगा। फिर दादी को तो ऑनेस्ट रह करके जो उस समय बात निकलती है निकलती है। तो उसने अपना प्रश्न शुरू किया, जब प्रोग्राम शुरू किया तो दादी ने जवाब देते शुरू किया, और आपस आपस में बाबा कुछ टच करता रहा है, वो बोलती रही और उसमें से भगवान भी निकला शब्द से। तो ऐसे तीन चार बारी होता रहा, तो उसको लगा कि दादी ने उसकी बात मानी नहीं और उसका सही प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे रही है, तो उसने इंटरव्यू के बीच में पेपर फेंक दिए टेबल पे, सारे पब्लिक के सामने। बाजू वाला जो वीआईपी था वो तो समझ गया कि ये रूट गया है, तो उसने शुरू कर दिया, माना कुछ ब्रेक नहीं आने दिया, जैसे एक नेचुरल रूप से दादी को एंगेज किया। और बीच में तो थे, एक बहन थी ट्रांसलेशन करने वाली, तो कुछ रुकावट ऐसे नहीं हुई, लेकिन इट वॉज क्लियर जो हम जानते थे कि कुछ हो रहा है यहां पे। तो प्रोग्राम के अंत में वो भाई आया दादी के सामने, इतना नाराज था, दादी आपने कोई भी मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने, और मैंने आपको बोला भगवान का नहीं बोला। अरे भाई, दादी ने, अरे भाई देखो ना, लोगों को इतनी प्राप्ति हुई प्रोग्राम से, देखो ना इतना अच्छा फीडबैक मिला, इतनी प्राप्ति हुई। अभी आप ऐसे सोचेंगे तो जिन आत्माओं को इतनी प्राप्ति मिलेंगी तो कैसे वो रखेंगे वो प्राप्ति, वो प्राप्ति ओम शांति हो जाएंगी। तो आप निमित्त हो और आप अपनी स्थिति को बिगाड़ रहे हो तो उनकी प्राप्ति कैसे रहेंगी। राइट बात थी दादी की, भूल जाओ ना, जो बाबा ने कराया वो कराया। फिर भी दादी चली गई लंदन, वो गया घर पे, सेंटर में, वो सेंटर में रहता था, फिर भी अंदर चले अंदर चले, बहुत दुख लिया दुख लिया। सवेरे 3 बजे उठता है, सीधा लंदन कार लेके लंदन जाता है। हाँ, अमृतवेले दादी उस समय लंदन में कंडक्ट कराती थी, अमृतवेले के बाद फिर दृष्टि देती थी। तो अमृतवेले के बाद दादी को रूम में लेके गए और वो भाई सामने आया, दादी मुझे इतना दर्द हो रहा है हार्ट में जैसे किसी ने चाकू लगा दिया है। पता है इमोशनल होता है कई कुछ बोलते हैं। तो दादी ने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दिया, अच्छा तो चाकू निकाल दो। ये है रहम। ऐसे नहीं, अरे मैंने क्या किया, सॉरी आपको किया, अरे क्या, उसका दुख नहीं लेना है। समझ में आई बात? हम रहम को क्या समझते हैं, किसी का थोड़ा दुख लेकर के फिर सिंपति में आना, गलत। रहम माना समझना कि मुझे, मैं एक पूर्वज आत्मा हूं, चाकू तो इसने लगाया अपने संकल्प से। दादी ने बोला बस चाकू निकाल दो। वो फिर बाद में इतना हंसने लगा, इतना एक सेकंड में हल्का हो गया। राइट बात थी वो, राइट शब्द निकलेंगे मुख से। ये है अपनी स्वमान की ताकत। समझ में आई? आप किसी का कर्म का हिसाब किताब अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, किसी का स्वभाव का प्रभाव नहीं ले रहे हो अपने ऊपर, तब जाकर के रियल रहम दिल बन सकते हैं। जो अभी आप रहम की डेफिनेशन के साथ बैठे हो ना, उसमें स्वार्थ मिक्स्ड है, उसमें दुख मिक्स्ड है। सभी का दुख ले लो और रहम करो, फालतू कोई अमृत में कुछ एक बूंद भी जहर डालो, अमृत रहता है क्या? तो ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। जब भी बाबा कहता है दुख न दो, दुख न लो, तो अपने आप को पूछो कौन सी ऐसी बात है जो अभी भी मैं दुख ले रही हूं। माना चाहना खत्म नहीं हुई है, क्योंकि संबंध में हम एक ही कारण से हार खाते हैं, हमारी इच्छाएं से। कोई भी हमको हार नहीं खिलाता है, हम अपनी इच्छाओं से हार खाते हैं। और इच्छाएं हमारे मानसिक अवस्था में इतनी हमको चला रही है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि मेरी इच्छा मुझे सता रही है, मुझे मेरे इच्छा के कारण मुझे दुख मिल रहा है। समझ में आई बात? ये बहुत गहरा रियलाइजेशन चाहिए। जब आप इच्छा को त्याग करेंगे, लेट गो करेंगे, थोड़ा सा भी ये होना चाहिए, मेरा विचार नहीं, मेरी फीलिंग, अरे आपको समझ में नहीं आ रहे मैं क्या बात कर रही हूं, किसी को समझाने की इच्छा, कोई समझे मेरी बात वो इच्छा, कोई माने मेरी बात वो इच्छा, छोड़ो। डेप्थ में जाग करके एक एक इन बातों को छोड़ो, तब जाग करके मन मन मना भाव रह सकता है, रहम के सागर के गोद में रह सकता है। तो चलो अभी योग शुरू करें। सच में आप जैसे बैठे योग में, अभी सब बातें छोड़ दो। किसी के प्रति कोई भी संबंध में तनाव है वो छोड़ दो, वो संबंध आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो। अंदर से सब बातों से न्यारे हो जाओ। पहले जहां पे भी बैठे हैं अलर्ट होकर के बैठो, और अपने कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अंदर की स्मृति जागरण करो, जो ध्यान बाहर जा रहा है उसको अंदर लेके चलो और इस शरीर से अपने आप को डिटैच करो। ये शरीर एक मंदिर है, एक एक जो दरवाजा है मंदिर का वो एक 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 कर्मेंद्रिया है, एक एक दरवाजे को बंद करो। अपने आप को, अपने ध्यान को अंदर ले, अंदर की शक्ति को महसूस करो। कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है? कौन सी शक्ति है जो इस शरीर में प्राण भरती है, श्वास ले रही है? अति सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन चैतन्य शक्ति, करंट के माफिक अभी वो शक्ति महसूस करो और इसको एकाग्र करो। भ्रुकुटी के बीच में पूरी शक्ति एकाग्र होकर के एक सूक्ष्म स्टार बन जाता है। एक न्यारी प्यारी आत्मा साक्षी के सीट पे बैठी हूं, और डीप चले जाओ अंदर। साक्षी से दृष्टा, देखते हुए बिना देखो, सुनते हुए बिना सुनो, जैसे मैं आत्मा कुल दुनिया से अपने आप को बहुत दूर महसूस करती हूं, और डेप्थ में चले जाओ, उपरांत चले जाओ, बिल्कुल साइलेंट, और शरीरी आत्मा विदेही रूप में सर्वशक्तिवान भाव के साथ अति सूक्ष्म आत्मा परमात्मा के वाइब्रेशंस की गोद में बैठी हूं। बच्चे बाप के लिए संसार होता है, मैं बाबा को संसार बना देती हूं। और ये फीलिंग अंदर से जागरण हो, मैं और मेरा बाबा बन, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, इस कनेक्शन में जो लाइट माइट किस आकाश निकल रही है, आकाश प्रकृति को पहुंच रही है, ये जो पांच तत्वों का तन है, वो लाइट माइट के आकाश पूरे तन में फैलती है, बीज है मैं और मेरा बाबा, इसकी गहराई में जाओ, उस कनेक्शन से ही लाइट और माइट निकलती है, जो भी मन का तनाव है हल्का सा समर्पण कर लो, मैं और मेरा बाबा और कुछ भी नहीं, की सकाश। आत्माओं को हलचल से बाहर निकालती है। इस सकाश से किसी का दुख दूर हो रहा है। मैं और मेरा बाबा रहम का सागर, प्यार का सागर, सर्वगुण सर्वशक्तियों की किरणें फैल रही है।